ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्व मंगल मांगल्यम् सर्व कल्याण कारकम् प्रधानम् सर्व धर्माणाम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् देवादि देवी 1008 भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की आप सभी आज सामायिक करने की एक सरलतम विधि सीखेंगे। सामायिक हम कैसे करें, क्या चिंतन करें, कैसे बैठें, क्या सोचें, उसका सरलतम उपाय क्या है, कहाँ से हम प्रारंभ करें। संयम की ओर यदि हम बढ़ रहे हैं, हमारे कदम पाप मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं यदि, तो सामायिक करना भी आवश्यक हो जाता है। सामायिक और ध्यान में बड़ा अंतर है। सामायिक को हम संयम कहते हैं, ध्यान नहीं। ध्यान अलग वस्तु है, सामायिक अलग वस्तु। जो सामायिक करना सीख लेता है वह ध्यान करना भी सीख जाता है। जिसको सामायिक करना ही नहीं आ रहा है उसको ध्यान करना भी संभव नहीं। पंच पापों से मुक्त होकर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में समता भाव रखना और परिग्रह से आधारित जीवन जीना छोड़कर सेल्फ डिपेंड होकर परिग्रह के बिना भी मैं रह सकता हूँ, ऐसा कहकर बाहरी संयोग वियोग की जो बातें परिग्रह संबंधी होती हैं इन सब में समता भाव रखकर जीने की कला सीखने का लक्ष्य बना करके परिग्रह से मुक्ति पाना ये सामायिक सिद्धि का प्रथम उपाय है। परिग्रह बहिरंग के 10 प्रकार के होते हैं। इन्हीं परिग्रहों को लेकर के हमारा मन सदा चंचल रहता है, इंद्रियां चंचल हो जाती हैं। इंद्रियां भी चंचल और मन भी चंचल, ये सभी आत्मा के लिए कहते हैं कि चल चल, जल्दी चल, समय हो गया है। वे वस्तु हमारे लिए चाहिए, ये वस्तु हमारे लिए चाहिए, इसकी पूर्ति कर, चल उठ। आत्मा के लिए मन और इंद्रियां आकर्षित करने लगते हैं सब मिल करके, क्योंकि इंद्रियों का जो विषय होता है वह बाह्य परिग्रह ही तो है। विषयों से दूर रहना, विषयों को त्याग करना, विषय के बिना भी मैं रह सकता हूँ, जी सकता हूँ, ऐसा कहकर परिग्रहमय जीवन जीने से ऊपर उठना, उससे परे हो जाना, यही सामायिक संयम की सिद्धि का प्रथम उपाय है। सामायिक सर्वप्रथम अपने जीवन में सिद्ध हो और फिर हम अपनी इंद्रियों को जब वश में रखे हुए होते हैं, मन वश में आता है, उस पर संयम का लगाम लग जाता है, तो वह चंचलपना समाप्त होता है। अब बात रह जाती है मन की एकाग्रता की, काया की एकाग्रता, वचनों की एकाग्रता, इसको गुप्ती के माध्यम से हम रोक लेते हैं। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, यह गुप्ती भी 2 प्रकार की होती है, व्यवहार गुप्ती और निश्चय गुप्ती। व्यवहार गुप्ती क्या है? तो कहते हैं आत्मा को सामायिक संयम को दिलाना और बहिरंग परिग्रह से सर्वथा मुक्त हो जाना, साथ साथ अंतरंग परिग्रह से भी मुक्त हो जाना, यही व्यवहार गुप्ती है। मन वचन काय को रोक लेना मात्र व्यवहार गुप्ती नहीं, बल्कि परिग्रह से मुक्त होकर परिग्रह की ओर मन वचन काय न दौड़े, चंचल न हो जाए, इस बात की सावधानी रखने का नाम व्यवहार गुप्ती है। व्यवहार गुप्ती हमें विषय कषायों से बचाती है, विषयों से भी बचाती है और कषायों से भी। जहां विषयों का अभाव हो जाता है और कषायों का अभाव हो जाता है, वहां पर व्यवहार गुप्ति का जन्म होता है। निश्चय गुप्ति ध्यान को दिला देती है तो व्यवहार गुप्ति हमें सामायिक संयम को दिला देती है, जिसके जीवन में व्यवहार गुप्ति आ जाती है उसके जीवन में नियम से सामायिक संयम आ जाता है, वह संयमी कहलाता है। यही मुनिजनों का छठे सप्तम गुणस्थान में शुभोपयोग के साथ जीने का स्थान है। छठा गुणस्थान और सप्तम गुणस्थान, यहाँ पर जो मुनि महाराज जी रहे हैं और शुभोपयोग के साथ हैं, वहाँ पर व्यवहार गुप्तियाँ पाई जाती हैं। जहाँ जहाँ शुभोपयोग होता है वहाँ वहाँ नियम से व्यवहार गुप्ति होती हैं, और जहाँ जहाँ व्यवहार गुप्ति होती हैं वहाँ वहाँ शुभोपयोग भी होता है। लेकिन व्यवहार गुप्ति यह मुनि के जीवन में होता है शुभोपयोग के साथ, क्या गृहस्थ के जीवन में भी व्यवहार गुप्ति होती है? यदि ऐसा प्रश्न उठाया जाए तो क्या कहेंगे? चौथे गुणस्थान में भी शुभोपयोग है, पंचम गुणस्थान में भी शुभोपयोग है, और दूसरी प्रतिमाधारी नियम ले रखा है कि मैं नियम से दो बार सामयिक करूंगा। सामायिक की प्राप्ति के लिए सामयिक करूंगा, ऐसा नियम ले रखा है। तो प्रतिमाधारी के जीवन में जो एक देश पंच पापों का त्याग होने से अनुव्रत प्रकट हुए हैं, परिग्रह प्रमाण इत्यादि के माध्यम से पंच पापों से क्षणिक निवृत्ति हो गई है, आंशिक निवृत्ति हो गई है, उस निवृत्ति के साथ क्या मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति रहेंगी? नहीं हो सकती। यदि औपचारिक रूप से अपन ये कहें कि हो सकती हैं, तो उपचार कथन का प्रवर्तन कहीं भी हो सकता है। अनुव्रत ही महाव्रतों के कारण होने से अनुव्रत ही महाव्रत कहें, ये उपचार कथन होगा। तो उपचार गुप्तियां भी हो सकती हैं। जितने प्रमाण में परिग्रह से निवृत्ति हो चुकी है उतने प्रमाण में मनोयोग, वचन योग और काय योग उतने प्रमाण के परिग्रह में प्रवृत्त नहीं होते। आजीवन पर्यंत इनका त्याग हुआ है। जितने परिग्रहों का हमने त्याग किया है उसमें मनोयोग प्रवृत्त नहीं होता, वचन योग प्रवृत्त नहीं होता, काय योग प्रवृत्त नहीं होता। इसी का नाम तो गुप्ति है। परंतु ये गुप्तियाँ अधूरी हैं, अधूरी गुप्तियाँ। अधूरी गुप्ति को गुप्ति नहीं कहा, गुप्ति में भी पूर्णता होना आवश्यक है। और व्यवहार गुप्ती में पूर्णता लाने के लिए, पूर्णता आने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो शेष जो पंच पाप बचे हैं उनको भी पूर्णतः त्याग करना पड़ेगा। त्याग करने पर शुभोपयोग की पूर्णता हो जाती है। गुप्ती यदि अपूर्ण है तो शुभोपयोग भी अपूर्ण है। शुभोपयोग यदि अपूर्ण है तो गुप्ती भी अपूर्ण है। है ना? सही है। गुप्ती अपूर्ण है, व्यवहार गुप्ती अपूर्ण है, तो व्यवहार गुप्ती की अपूर्णता से जिसकी कीमत 100 रुपये की है उस वस्तु को हम खरीद नहीं सकते। हमें निश्चय गुप्ती को खरीदना है। क्या चाहिए? व्यवहार गुप्ती चाहिए। व्यवहार गुप्ती का 100 का नोट चाहिए। और पंचम गुणस्थानवर्ती प्रतिमाधारी या उपचार महावृत्ति आरिका इत्यादि के पास, इन साधकों के पास 100 रुपये है क्या? यदि 100 रुपये नहीं हैं तो हम निश्चय गुप्ती की बात ही नहीं कर सकते। दुकान में आप चले जाइए, जिसका रेट पॉकेट पर ही लिखा है 100 रुपये, तो दुकानदार 2 रुपये अधिक लेगा, मुनाफा उसको भी चाहिए, तो 102 मांगता है वो। दुकान में तो ऐसी बात हो सकती है, लेकिन मोक्ष मार्ग में बात ऐसी नहीं। पॉकेट पर जो रेट लिखा है वैसी रेट से माल मिलेगा। तो निश्चय गुप्ती के माल को खरीदना चाहते हैं तो व्यवहार गुप्ती 25% रहे तो चलेगा क्या? 50% रहे तो चलेगा क्या? 75% रहे तो चलेगा क्या? 95% रहेगा तो चलेगा क्या? 99% रहेगा तो चलेगा क्या? निन्यानव का 99 है। यहां 100 का 100 चाहिए। जहां व्यवहार गुप्ती की पूर्णता हो जाती है वहां पर शुभोपयोग भी पूर्ण हो जाता है। छठे सप्तम गुणस्थान तक इस शुभोपयोग की मर्यादा है। शुभोपयोग 7वें गुणस्थान तक रहता है। 7वें गुणस्थान का शुभोपयोग उत्कृष्ट गुप्ती, व्यवहार गुप्ती के साथ विद्यमान होता है। 6वें गुणस्थान की गुप्ती से भी निश्चय गुप्ती के माल को हम खरीद नहीं सकते। हाँ, 7वें गुणस्थान के व्यवहार गुप्ती से ही हम निश्चय गुप्ती को खरीद सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि निश्चय गुप्ती शुद्धोपयोग आत्मानुभूति का अविनाभावी संबंध रखने वाली गुप्ती है। निश्चय गुप्ती, निश्चय गुप्ती कहो, शुद्धोपयोग कहो, आत्मानुभूति कहो, ये सब एकार्थक वचन हैं, एकार्थक शब्द हैं। अविनाभाव संबंध को रखने वाला सिद्धांत यहां होता है। छठे गुणस्थान में भी शुद्धात्मानुभूति नहीं है, क्यों नहीं है प्रश्न उठाया जाए, व्यवहार गुप्ती की अपूर्णता है, शुभोपयोग की अपूर्णता है, 100% शुभ उपयोग छट्टे में नहीं है, 100% व्यवहार गुप्ती छट्टे में नहीं है, सप्तम गुण स्थान में है और वह 100 रुपये के नोट के समान है। सप्तम गुण स्थान वाला शुभोपयोग और सप्तम गुण स्थान वाली गुप्ती व्यवहार गुप्ती, निन्यानव कौन है? छठे गुण स्थान में 99 और सप्तम गुण स्थान में 100। 100 से सौभाग्य का द्वार खुलता है। 100 99 से प्रश्न उठता है, 99 से नियार प्रश्न उठता, नियार ना 99, तो आपको इस दुकान में प्रवेश नहीं है। नी यार ना 100, तो सौभाग्य का द्वार, दुकान का द्वार खुल जाता है। जब हम व्यवहार गुप्ती के 100 के नोट को निश्चय गुप्ती के लिए दिखाएंगे तो निश्चय गुप्ती के दुकान का द्वार सौभाग्यवश खुलता है। कितना बड़ा सौभाग्य चाहिए, क्या क्या दुर्लभताओं को पार करके हमको यहाँ तक आना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि 3 गति में जो आत्मा परिभ्रमण कर रही थी अनादि काल से, मनुष्य गति में जन्म ले, मनुष्य गति में भी म्लेच्छ खंड के जन्म से बचे, भोग भूमि के मनुष्य होने के भाग्य से भी बचे, वो भी भाग्य है, लेकिन आर्यखंड के जन्म के अपेक्षा से भोग भूमि का जन्म भाग्य नहीं, दुर्भाग्य है। कुभोग भूमि के मनुष्य होने से भी बचे, 3 ही जगह मनुष्य रहते हैं, म्लेच्छ खंडों में, आर्य खंडों में, कुभोग भूमि में और सुभोग भूमि में, 4 जगह, 4 जगह मनुष्य पाए जाते हैं। सौभाग्यशाली मनुष्य किस क्षेत्र के माने जाएंगे? आर्य खंड के मनुष्य सौभाग्यशाली। आर्यखंड तो मिला, गति का सौभाग्य का द्वार खुल गया, मनुष्य गति मिली, आर्यखंड का द्वार भी खुल गया, आर्य मनुष्य होकर के जन्म लिए, लेकिन आर्यखंड के अंदर भी आर्य म्लेच्छ भी रहते हैं और आर्य मनुष्य भी रहते हैं, म्लेच्छ मनुष्य भी रहते हैं और आर्य मनुष्य भी। इसमें किससे बचे? आर्यखंड के म्लेच्छ होने से बचे और आर्यखंड के आर्य मनुष्य होने से सौभाग्य प्राप्त करे। यहां के मनुष्य हो गए, तो यहां का मनुष्य होने मात्र से भी पर्याप्त नहीं है, तो पहला कौन सा सौभाग्य का द्वार खोलना पड़ेगा? धर्म का द्वार, रत्नत्रय का द्वार एक है ना, तो सम्यक दर्शन का द्वार खुले और मिथ्या दर्शन के दुर्भाग्य का द्वार बंद हो जाए। सम्यक दर्शन का द्वार खुले, सम्यक ज्ञान का द्वार खुले और इसके पश्चात संयम का द्वार खुले, संयम के द्वार को खोलने के लिए हमको 100 के 100 होना पड़ता है। 99 भी चलेगा नहीं, 75 भी चलेगा नहीं, और 25 भी चलेगा नहीं। अयलक अवस्था में एक श्रावक उत्तम श्रावक कहलाकर वह 99 पर पहुंच जाता है। स्त्री पर्याय तो स्त्री पर्याय है, संयम को द्वार खोलने में, संयम के द्वार को खोलने में सक्षम नहीं है यह पर्याय। देश संयम का द्वार खोल सकती है, लेकिन संयम के द्वार को खोल नहीं सकती। तो 99 किसका नाम है? स्त्री पर्याय का नाम है कि पुरुष पर्याय का? पुरुष पर्याय का। अयलक का नाम 99 है। और क्षुल्लक का नाम कहो, कुछ भी कहो, कम करके कहो, ज्यादा करके मत कहो, 98 कहो या 95 कहो, कहो कुछ भी कहो, अयलक से तो कम है ना, अयलक से कम है। इसके पीछे 10वीं प्रतिमाधारी बैठे हैं, 10वीं प्रतिमाधारी के पीछे 9वीं प्रतिमाधारी बैठे हैं, उनके नीचे 8वीं प्रतिमाधारी, उनके नीचे 7वीं प्रतिमाधारी, ये सभी संख्या में कम 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 हैं। व्यवहार गुप्ति भी कम है और शुभोपयोग भी कम है। शुद्धोपयोग को पाने के लिए, आत्मानुभूति को पाने के लिए शुभोपयोग को पूर्ण करना पड़ता है। पहला शर्त तो ये है, पहली शर्त ये है, शुभोपयोग को पूर्ण के बिना शुद्धोपयोग की उपलब्धि नहीं होती है। और आत्मानुभूति किसका नाम? शुद्धोपयोग का अपर नाम है आत्मानुभूति, शुद्धात्मानुभूति। जैन दर्शन के शास्त्रों को पढ़ करके कुछ लोग, बहुत सारे लोग भ्रमित हुए हैं आज वर्तमान में। उनकी वह धारणा आगमोक्त न होने से, जिन मत से भिन्न मत का रूप धारण कर रहा है, जिन मत से भिन्न मत का रूप धारण करने जा रहा है, यदि समल जाए तो जिन मत में आ जाए, न समले तो जन मत में रहे। धारणा में, ज्ञानोपयोग में ये धारणा है, वो कहते हैं आत्मा की विशुद्धि को ही शुद्धोपयोग कहते हैं। विशुद्धि को शुद्धोपयोग यदि मानेंगे तो विशुद्धि पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक है, तो सब जगह आत्मानुभूति रहेगी। यदि विशुद्धि का नाम शुद्धोपयोग है तो पहले गुणस्थान में 5 लब्धियां सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो प्राप्त करते हैं, 5 लब्धियों में उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ती जाती है, तो आत्मानुभूति भी इधर होती जाती है, शुद्धोपयोग भी इधर होता जाता है, शुद्धात्मानुभूति भी इधर होती जाती है, और इधर सम्यक दर्शन भी प्राप्त होने के सन्मुख जीव चला जाता है। यानी आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ये सिद्ध करती। जिसको आत्मानुभूति हुई है वही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है और वही सम्यक दृष्टि कहला सकता है। सम्यक दृष्टि की पहचान ही यह है कि जिसको आत्मानुभूति हुई है और सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है वही सम्यक दृष्टि, असली सम्यक दृष्टि। ऐसी धारणा बैठी हुई है, परंतु आगम का अर्थ ठीक ढंग से न लगाने का परिणाम ये है कि विशुद्धि को आत्मानुभूति मान लिया और आत्मानुभूति पूर्वक ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है ये कहना, और सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद तो आत्मानुभूति रहती ही है जीव को ये कहना, ये जिन मत नहीं बल्कि जन मत है। यह क्षीर नीर विवेकपूर्ण बात हमको पता रहना चाहिए, क्योंकि कहीं हम भी भटक न जाए जनमत के संपर्क में जाकर। और इसका खूब प्रचार प्रसार होता है जनमत के नाम से, जनमत का प्रचार प्रसार होता है। तो अपन भी भटक सकते हैं कि नहीं, अगर सही ज्ञान ना हो, सही मार्गदर्शन पता ना हो, नहीं किसी के शरण में होने मात्र से ही हम नहीं भटकते ऐसा नहीं कह सकते। हमारे पास स्वयं का विवेकपूर्ण ज्ञान हो तो ही हम उससे बच सकते हैं, अन्यथा हम भी समय सार पढ़ लेंगे, हम भी जिनेंद्र भगवान के वचनों को, जिन शास्त्रों को पढ़ लेंगे और सही सही अर्थ नहीं लगा पाए तो हमारे सामने बैठ करके भी आप जनमत की तरह अर्थ ग्रहण करके जनमत की उत्पत्ति करा सकते हैं। गुरु का सानिध्य केवल विवेक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए होता है। गुरु थ्योरेटिकल मार्ग बताते हैं, प्रैक्टिकल मार्ग जीना तो स्वयं को करना पड़ता है, स्वयं को जीना पड़ता है। हम स्वयं विवेकपूर्ण जीवन जी रहे हैं तो वहां पर आत्मानुभूति होगी। और जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा ही श्रद्धान करना है, वैसा ही चलना है, वैसा ही समझना है, उन तत्वों के अनुकूल होकर के चिंतन करना है। अपना चिंतन कभी कभी भटकता है, किस समय और कहां भटकता है, जब हम पढ़ते हैं ना अपने लिए जो अच्छा लगता है वैसा अर्थ उसका ग्रहण करके निकल पड़ते हैं। जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है तो कैसा हमको धारणा बनाना है, किसके अनुरूप अनुकूल होकर के हमको चिंतन करना है ये नहीं सोचते। हमारे चिंतन के लिए जो अच्छा लगता है वैसे उन वचनों को इधर ढालना चाहते, और यही हुआ है। जिनेंद्र भगवान के वचनों को, वचन के अर्थ को उनके अनुरूप, यानी उनके अनुरूप हम नहीं हुए, हम जो चाहते हैं वैसा उनको ढाल दिया, उसको हमारे अनुरूप कर दिया, हमारे रुचि के अनुरूप जिनेंद्र भगवान के वचनों को ढाल दिया और उन्हीं वचनों को, अपने वचनों को जिनेंद्र भगवान का वचन कहकर, आगम कहकर हम निकल पड़े, सबको बांटते रहे, स्वयं भी उसका भोजन करते रहे। भोजन अकेले नहीं करना चाहिए ना, दयालु को, दयालु भोजन करने से पहले अतिथि को प्रतीक्षा, अतिथि की प्रतीक्षा करता है, कोई मिलेगा क्या, मुझे तो मिल गया भोजन, मैंने तो बहुत स्वाध्याय कर लिया, मैंने बहुत कमा लिया, लेकिन इसका दान दूसरे को भी दे दूं ये अच्छी बात है। यह कह करके वह शास्त्र भी दे सकता है। हाँ, श्रावक लोग लिख करके मुनियों को दे रहे हैं और मुनि श्रावक के अनुसार चले, श्रावक गुरु और मुनि शिष्य। ऐसा हो रहा है, हो रहा है, शिष्य गुरु बन रहा है और गुरु शिष्य बन रहे हैं, चल रहा है, इसी का नाम तो संसार है। 365 मतों की उत्पत्ति किससे होती है? विवेकी निर्ग्रंथ गुरुओं से या असंयमी के उपदेशों से? श्रावक आगम ग्रंथों का उपदेश देने का अधिकारी वैसे नहीं होता, संयमी का ही उपदेश श्रावक को सुनना चाहिए। कौन से संयमी? भाव संयमी और द्रव्य संयमी, दोनों संयमी। दोनों प्रकार का संयम जिसके पास हो, विवेकपूर्ण आगम का ज्ञान हो, उससे ही उपदेश सुना जाता है। हमारी इच्छा क्या होती? हमको बहुत जल्दी रहती है, हमारी जल्दबाजी रहती है कि हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करना है और कहीं से भी मिले हमको इकट्ठा ही करते जाना है। इतनी भागा दौड़ी रहती है कि कहीं भी पहुंच जाते हैं, और थोड़ा बहुत भी हमने अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया है तो उस स्थान पर जा करके अद्वैत अद्वा ज्ञान इकट्ठा करके आ गए तो वह इकट्ठा किया हुआ थोड़ा बहुत जो पवित्र ज्ञान था वो भी अपवित्र हो जाता है। जिनको नमोकार मंत्र का अर्थ भी सही तरह से लगाना नहीं आता, वह भी व्यक्ति पूछता है, महाराज हम समय सार पढ़ सकते हैं? कितना बड़ा प्रश्न कर रहा है वो। नमोकार मंत्र का सही अर्थ मालूम नहीं है। नमोकार मंत्र में कौन है, कितने हैं और कैसे हैं, उनके गुणधर्म मालूम नहीं है। वह व्यक्ति समय सार पढ़ने के लिए बैठ जाता है तो समय सार तो एक पीएचडी वाला ग्रंथ है, उसका अध्ययन करके वह क्या करेगा? असंयमी है। असंयमी जन को समय सार पढ़ना नहीं चाहिए, ये भी सही है। समय सार वह असंयमी पढ़ सकता है जिनको महावृति मुनि बनने के भाव हैं, पंच पापों को त्याग करने के भाव हैं, और पंच पापों को त्याग करने के लिए छटपटा रहा है, और मुनि बनने के बाद किस तरह से ध्यान किया जाए, किस तरह से आत्मा को निर्मल बनाया जाए, इसकी चिंता जिसको लगी हुई है, वह व्यक्ति यदि समय सार पढ़ लेता है तो कोई बात नहीं। पर यदि कोई किसी श्रावक को शुद्धात्मानुभूति ही श्रावक अवस्था में हो रही है तो वह समय सार को पढ़ करके क्या करेगा? वो यही सोचेगा, मुनि बनकर शुद्धात्मानुभूति करने की अपेक्षा श्रावक बनकर शुद्धात्मानुभूति करना यह सस्ता काम है, सस्ता काम छोड़कर महंगा काम क्यों करते हो, ये कहेगा ना। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब ऐसे भ्रमित ज्ञानोपयोग वाले भव्य जीवों को ये समझ में आया कि शुद्धात्मानुभूति गृहस्थ अवस्था में होती है तो मुनि बनने का नहीं बनने का, मुनि मार्ग को स्वीकार करने पर रोक लगा दिया गया। इस विचारधारा वाले कोई भी मुनि दीक्षा नहीं लेंगे, और यदि लेंगे तो इस विचारधारा से बाहर हैं, ले सकते हैं। और यदि इस विचारधारा में इसी ग्रुप में रहना हो तो आपको मुनि दीक्षा नहीं लेना, और मुनियों को भी नहीं मानना। कैसा नहीं मानना? ऐसा मानना कि चौथे काल में ही मुनि होते थे, पंचम काल में मुनि बिल्कुल नहीं होते, ऐसा मानना हमारे ग्रुप में रहना हो तो। और जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा? पंचम काल के अंतिम समय तक रहने वाले आर्यखंड के, इस आर्यखंड में जो मनुष्य उत्पन्न होंगे वो तीन सनन वाले तो होंगे ही होंगे, चौथा सनन, पांचवा सनन और छठा सनन, ये तीन सनन वाले तो होंगे ही होंगे। और इन तीनों सनन वालों को गुणस्थान कितना बताया कर्मकांड में? जिनेंद्र भगवान की वाणी है षटखंडागम, कर्मकांड, जीवकांड इत्यादि ये ग्रंथ कितने गुणस्थान बता दिया, 1 से 7 तक बताया है। और फिर इन्होंने क्या कानून लागू किया, पंचम काल में मुनि ही नहीं होते, यानी गुणस्थान नहीं बनते। यदि ऐसा है तो श्रावक भी नहीं होते, चौथा गुणस्थान भी नहीं होता, न श्रावक होते हैं न मुनि होते हैं, ये दोनों कहना चाहिए था। नहीं, स्वार्थ की बात तो सुरक्षित रखेंगे। श्रावक तो होता है, सम्यक दृष्टि होता है, शुद्धात्मानुभूति वाला होता है, लेकिन शुद्धात्मानुभूति वाला मुनि नहीं होता। देखो कैसी विडंबना है विचारों में। हाँ, वो तो किरण कहीं से भी निकल आती उनकी, उनका सूरज भी अलग है, उनका विश्व भी अलग है। उस विश्व में, उस जगत में, उस दुनिया में कौन सा सूरज कब उग जाए कोई भरोसा नहीं है, और किधर से किरण फूट जाए ये भी भरोसा नहीं है ना। ऐसी बात हो रही है। इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रख करके अपने को मार्ग बनाना है, अपना मार्ग बनाना है, अपने आत्मा के लिए अपने मार्ग को प्रशस्त रखना है और ज्ञान पूर्ण रखना है, विवेक पूर्ण रखना है। पंचम काल में मुनि नहीं होते, ये वचन जनवाणी के वचन है, जिन मत के वचन नहीं है, इतना ज्ञात रहे। पंचम काल के अंतिम समय तक, यानी कितने समय तक, पंचम काल खत्म होने में 3 साल 8.5 महीने शेष रहने तक इस धरती पर दिगंबर मुनि, छठे सप्तम गुणस्थान वाले भावलिंगी मुनि रहने वाले हैं, निश्चित है। और द्रव्यलिंगी बिल्कुल नहीं रहेंगे, ऐसा भी है क्या? नहीं, द्रव्यलिंगी मुनियों का भी अस्तित्व चौथे काल में भी था, पंचम काल में भी रहेगा। वो कहाँ जाएंगे बेचारे, वो भी रहेंगे। जिनकी आत्मा की विशुद्धि बन नहीं पाई द्रव्यलिंग में रह गए, और जिनकी बन गई वो भावलिंग में चले गए। कैसे धारणा बना लिया, कुछ मुनियों को आचार विचारों से रहित देख करके ये निर्णय लिया गया कि पंचम काल में बिल्कुल मुनि नहीं होते, यानी ऐसा निर्णय लिया गया। 3-4 व्यक्ति शराब पीने वाले उनको मिल गए तो इस धरती पर दूध पीने वाले कोई भी नहीं है, ऐसा अनुमान लगा लिया गया। शराब का त्यागी और दूध पीने वाले कोई एक भी नहीं है, ऐसा निर्णय लिया गया। चाहे चौथा काल हो चाहे पंचम काल हो, दोनों प्रकार के साधु मिलेंगे। चौथे काल में रुद्र होते हैं, रुद्र कितने होते हैं संख्या में, 11। मुनि बनते हैं क्या? नहीं, दिगंबर दीक्षा ले लेते हैं। पहले तो भावलिंगी मुनि बनते हैं, 11 अंग और 10 पूर्वी का श्रुत ज्ञान भी इनको प्राप्त हो जाता है, 10 पूर्वी में जा करके फेल हो जाते हैं। कौन सा पूर्व, उसका नाम क्या है? विद्यानुवाद पूर्व। विद्या भरपूर आ गई, 11 अंग का ज्ञान आ गया, ज्ञान बढ़ गया, पर विवेक ज्ञान नहीं आया। विवेक ज्ञान साथ नहीं रहा तो 11 अंग और 10 पूर्वी के बाद भी वह च्युत हो सकता है अपने गुणस्थानों से, ग्यारह अंग और चौदह पूर्व, ग्यारह अंग और दस पूर्व का ज्ञान छठे सप्तम गुणस्थान में रहकर यदि प्राप्त भी किया तो विद्यानवाद पूर्व में जा कर के वहाँ पर परीक्षा होती है साधक की प्रैक्टिकल। जैसे सर्विस मिलने से पहले इंटरव्यू करते हैं ना, इंटरव्यू लेते हैं और उसमें परीक्षा हो जाती है व्यक्ति की, उस पर से घोषित होता है कि व्यक्ति सर्विस के लिए योग्य है, टीचर बनने के योग्य है। हाँ? क्या ग्यारह अंग और चौदह पूर्व से च्युत नहीं होते, दस पूर्व से च्युत नहीं होते, अंग से च्युत नहीं होते, अंग ज्ञान ज्यों का त्यों बना रहेगा, गुणस्थान से च्युत होते हैं, संयम से च्युत होकर नीचे के गुणस्थानों में आते हैं, ज्ञान यथावत रहता है। ज्ञान मिथ्या हो जाता है, कब मिथ्या हो जाता है, चौथे गुणस्थान से भी नीचे आ जाए तो उनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है, और पंचम गुणस्थान में चौथे गुणस्थान में आ जाए तो वह ज्ञान असंयम पूर्ण ज्ञान कहलाता है, परंतु सम्यक ज्ञान ही होता है। सम्यक ज्ञान असंयम के साथ भी रहता है और सम्यक ज्ञान संयम के साथ भी होता है। चौथे गुणस्थान में असंयम है, पंचम गुणस्थान में सीमा संयम है, इन दोनों जगह सम्यक ज्ञान है क्या? नहीं है, सम्यक ज्ञान है, लेकिन वह सम्यक ज्ञान वंदनीय नहीं है, पूजनीय नहीं है। संयम के साथ रहने वाला ज्ञान तो वंदनीय पूजनीय है, पर असंयम और देश संयम के साथ रहने वाला ज्ञान और सम्यक दर्शन, ये दोनों वंदनीय पूजनीय नहीं है। ये जैन दर्शन की नींव है, दिगंबर जैन धर्म की नींव है, फाउंडेशन है। इसलिए हमारे समाज का नाम क्या पड़ा? दिगंबर जैन समाज। दिगंबरत्व के बेस पर, दिगंबरत्व के सिद्धांत पर हमारे समाज का नाम दिगंबर जैन समाज पड़ा है। हम किसकी मान्यता वाले हैं? देखिए, किसकी मान्यता वाले हैं हम? दिगंबरत्व सिद्धांत की मान्यता वाले हैं। और दिगंबरत्व का सिद्धांत ये बोलता है, आपका उपास्य तो दिगंबर ही हैं, असयमी नहीं। जिसकी पूजा भी कर लो, आरती भी उतार लो, नमोस्तु भी कह दो, नमोस्तु कहने के लिए भी ज्ञान के साथ और सम्यक्त्व के साथ संयम आवश्यक है। इसीलिए तो असंजदम न वंदे, कितना बढ़िया सूत्र है ये चिंतन के लिए। आप बार बार चॉकलेट के समान चूस चूस करके देखते रहो इसको, असंजदम न वंदे, ये क्या बोल रहा है सूत्र? असंयमी वंदनीय नहीं है, यानी असंयम के कारणीभूत विषय आदि परिग्रह जिस गुणस्थान तक रहते हैं, उस गुणस्थान तक के जीव वंदनीय पूजनीय नहीं रहते। भले ही देश संयम हो, भले ही उपचार महाव्रत आदि भी हो, वंदनीय पूजनीय नहीं रहते, आदरणीय अवश्य रहते हैं। कैसा आदरणीय? वंदामि माताजी, इच्छामि महाराज, महाराज भी कह दिया और इच्छामि कह दिया। इच्छामि क्यों कहा? महाराज आप तो महाराज बनने जा रहे हैं, अभी तो क्षुल्लक ऐलक हो, आप महाराज बनने जा रहे हैं तो महाराज बनने जा रहे हैं, महाव्रतों को धारण करने जा रहे हैं, महान व्रतों का धारण करने वाला महाराजा होता है, राजाओं का भी राजा महाराजा, राजा भी जिसकी वंदना करते हैं, जाप करते हैं, नमोकार मंत्र का जाप चक्रवर्ती भी करता है, महाराजा राजाधिराज चक्रवर्ती। ये भौतिक सुखों की अपेक्षा है, भौतिक संपदा की अपेक्षा, भौतिक वैभव की अपेक्षा से महाराज हैं, परंतु आत्म संपत्ति की अपेक्षा से चक्रवर्ती कौन? दिगंबर मुनि, निर्ग्रंथ मुनि, रत्नत्रयधारी मुनि चक्रवर्ती कहलाते हैं। आत्मा की अपेक्षा से रत्नत्रय के धारी दिगंबर मुनि चक्रवर्ती हैं। केवल चारित्र चक्रवर्ती नहीं, ज्ञान चक्रवर्ती भी होना, सम्यक्तो चक्रवर्ती भी होना, और सम्यक्तो में हम चक्रवर्ती बन ही नहीं सकते आज, क्षायिक सम्यक्तो प्राप्त कर सकते हैं क्या? कमाओ उसको भी फिर सम्यक्तो चक्रवर्ती बनोगे? केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मन परे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं क्या? उसको भी नहीं। अवधि ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं क्या? उसको भी नहीं। द्वादशांग ज्ञान पूरी तरह से उपलब्ध हो सकता है क्या? वो भी नहीं। तो ज्ञान चक्रवर्ती भी हम नहीं बन सकते। चारित्र चक्रवर्ती वो भी नहीं बन सकते हम। सामायिक संयम से परे जो संयम हैं, उन संयमों को प्राप्त कर सकते हैं क्या? सामायिक छेदोपस्थापना, दो चारित्र तो पंचम काल में हैं, परिहार विशुद्धि संयम प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं, वो संपदा हमको प्राप्त हो ही नहीं सकती। सूक्ष्म सांप्राज संयम तक पहुंच सकते हैं क्या? नहीं। यथा क्या चारित्र को प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं। ये सारे संयम हमारे पास नहीं हैं, तो हमको चारित्र चक्रवर्ती पदवी क्यों देते हो? शांति सागर महाराज ने यही कहा लोगों से, ये क्या बोझा मुझे सिर पर रख रहे हो? मैं जानता हूं चारित्र चक्रवर्ती कौन होता है, और तुम लोग कुछ भी नहीं जानते हो, और ये पदवी हमारे माथे पर रख दिया। चारित्र चक्रवर्ती बनने के लिए चौथे काल में जन्म लेना पड़ता है। यथा क्या चारित्र तक पहुंचना, चौदहवें गुणस्थान में जाने के बाद ही रत्नत्रय से चक्रवर्ती बनता है। उनके पास क्षायिक सम्यक्तु भी है, उनके पास केवल ज्ञान भी है, और उनके पास यथा क्या चारित्र की पूर्णता भी है। ये हैं चारित्र चक्रवर्ती। आज पंचम काल में ऐसे पदवियों को देना यद्यपि उचित नहीं है, लेकिन भक्त लोग दे देते हैं तो साधु क्या करें, यही परिस्थिति उस समय में हो गई। भक्तों ने दिया, भक्तों का प्रसाद जबरदस्ती में थाली में रख दिया, अब क्या भोजन करे? नहीं, महाराज ने कहा ये मेरा भोजन नहीं, ये भोजन तो चौदहवें गुणस्थान वाले का भोजन है, उनको परोस दो। और आपने जो परोसा है वो नकली भोजन है। आपका परोसा हुआ भोजन किस प्रकार का है बता दूं? शायद बताया भी होगा उन्होंने और बताना भी पड़ेगा। उन्होंने ये बताया होगा कि आपने खाने के लिए फल को थाली में परोस दिया, लेकिन कौन से फल परोस दिया मालूम? वो जो शोकेस में रखते हैं और बिल्कुल सड़ते नहीं, गलते नहीं, धूमिल नहीं होते, कांच में रखते हैं, प्लास्टिक के या लकड़ी के भी बनते हैं, जो हम खा नहीं सकते उसको परोस दिया, और हम जो खा सकते हैं उसको तो आपने परोसा ही नहीं। मुझे तो इतना कहना पर्याप्त था, मैं एक सामायिक संयमी हूं और छेदो साधना वाला साधु हूं, पर इतना ज्ञान भी किसको था? परोसने वाले के पास इतना विवेक ज्ञान थोड़ी था। परोस दिया लेकिन साधु नहीं खा सकता, उनका भोजन हम कैसे करें? ऊपर वाले का भोजन, चक्रवर्ती का भोजन अलग रहता है। भरत चक्रवर्ती जो खाता है ना, वो कोई पचा नहीं सकता। उसमें से थोड़ा सा एक टुकड़ा भोजन भी किनारे पर लेकर के रख दें, उसको पूरी सेना खा लेती है, थोड़ा थोड़ा करके। और चक्रवर्ती जो खाता है वो भोजन कोई व्यक्ति इस धरती पर पचा ही नहीं सकता। जटराग्नि चक्रवर्ती की इस प्रकार की होती है। तो अपन ने किसका भोजन परोस दिया? साधु को। चौदहवें गुणस्थानवर्ती चक्रवर्ती जो खाता है, भोजन करता है, उसको हमने इस थाली में डाल दिया। और डाल भी कैसे सकते, सामने वाले के पास भोजन होगा तब ना। चौदहवें गुणस्थान का भोजन आपके पास है क्या? नहीं है। तो परोसा तो किसको परोसा? उसका मॉडल तैयार किया उसका एक मॉडल तैयार किया और उस भोजन को परोस दिया। वो न खा सकते हैं न सूंघ सकते हैं, उसमें गंध भी नहीं और खाने के लायक भी नहीं, वो शोकेस में रखने लायक है। तो आज कितनी जितनी भी आप पदवियां साधुओं को दे दो, ऊंची ऊंची पदवियां, वो सब शोकेस में रखने लायक हैं। असंयमी संयमी को उपाध्याय पदवी दे रहे हैं, उपाधि दे रहे हैं, क्या उपाध्याय पदवी दे रहे हैं? सभी असंयमी हैं। असंयमी के पास क्या होता है? खुद के पास वो चीज पहला होना, किसी दूसरे को दे रहे हैं तो हाँ। चलो ठीक है, हमको तो थोड़ा सा सामायिक कराना था और कहाँ चले गए आत्मा का ध्यान कैसा करे? तो करे कैसा करे, चिंतन का रास्ता मैं बता देता हूं। आसन मांड करके बैठ जाइए। कितना समय बचा है? 20 मिनट है, 20 ही मिनट ध्यान करेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। मुझे उत्तर भी नहीं देना है प्रश्न करूं तो, पर प्रश्न जरूर करूंगा, उसका उत्तर ढूंढ करके मन को समझाना है कि हे आत्मा, महाराज जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर तो मुझे मिला है और ये उत्तर तुमको ही परोस रहा हूँ, ऐसा कहकर आत्मा को ही उस उत्तर को समझाना है। ध्यान करने का सरलतम उपाय, थोड़ा सा आज हम बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। ध्यान आपको नहीं होता, लेकिन ध्यान का संस्कार लेने में कोई आपत्ति नहीं आती। ध्यान का अभ्यास करने से, सामायिक का अभ्यास करने से मोहिनी कर्म की तीव्रता घट जाती है, मोहिनी कर्म मंद पड़ जाता है और आत्मा निष्प्रही निर्मोही होने के लिए अग्रसर होता है। यही श्रावक को ध्यान या सामायिक करने का फल है। तो बेटी बेटे हैं ना, हाँ, रत्नत्रय के विरुद्ध तीन विषय होते हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तीन विषय हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अब प्रश्न उठते हैं, आत्मा, यह मेरा आत्मा अनादि काल से मिथ्या तो दोष से दूषित रहा है, आज भले ही सम्यक दृष्टि बन चुका है, प्रतिमाधारी बन चुका है, लेकिन अनादि काल से तो इसने मिथ्यात्व को ही किया है, मिथ्यात्व दोष से दूषित रहा है। यह मिथ्यात्व चार प्रश्न में से उत्तर निकालना है कि ये मिथ्यात्व क्या है। मिथ्यात्व अनादि शांत है क्या नहीं देखें। अनादि शांत हैं, उत्तर मिल गया है। किस जीव की अपेक्षा से अनादि शांत है चिंतन करे। भव्य जीव की अपेक्षा से अनादि मिथ्या दृष्टि, जीव की अपेक्षा से मिथ्यात्व अनादि शांत है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से यह मिथ्यात्व क्या है, अनादि शांत है नहीं। सादी शांत है, हाँ सादी शांत है। अनादि अनंत हो सकता है क्या, नहीं, अनादि अनंत नहीं हो सकता। अनादि शांत नहीं हो सकता, अनादि अनंत नहीं हो सकता। सादी अनंत हो सकता है क्या, देखें, सादी मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व सादी अनंत हो सकता है क्या चिंतन करे, नहीं हो सकता। क्योंकि जब सम्यक दर्शन हुआ था, मिथ्यात्व का अंत हुआ था, पुनः जब सम्यक दर्शन नियम से प्राप्त करेगा तब अंत होने वाला है, इसलिए यह केवल सादी शांत ही है, सादी अनंत की कोटि में भी नहीं बैठ सकता। मिथ्यात्व यह दोष अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से अनादि शांत है, साधी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से साधी शांत पर्याय है, इसका चिंतन करें। पर्यायें चार प्रकार की होती हैं, अनादि शांत पर्याय, सादि शांत पर्याय, सादि अनंत पर्याय और अनादि अनंत पर्याय। यदि मिथ्यात्व दोष सादि शांत है तो यह नश्वर है, घबराने की जरूरत नहीं कि यह दोष मेरा छूटेगा या नहीं। जो सादि शांत स्वभाव वाला होता है वह नियम से कभी न कभी अंत को प्राप्त होता है। इस दोष का अंत मैंने कर लिया है और सम्यक्त्व को प्राप्त कर चुका हूँ, साथ ही मैं देह संयम को भी धारण कर चुका हूँ, मैं सम्यक दृष्टि आत्मा हूँ, मैं सम्यक ज्ञान को धारण करने वाला आत्मा हूँ, मेरा गुणस्थान पंचम गुणस्थान है, पंचम गुणस्थान भी सादि शांत गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान भी सादि शांत वाला है, मिथ्यात्व भी सादि शांत वाला है, सारे गुणस्थान सादि शांत होते हैं। ये प्राप्त भी होते हैं और छूट भी जाते हैं। छूटते हैं इसलिए शांत हैं, प्राप्त होते हैं इसलिए सादि हैं। इसलिए मेरा स्वभाव गुणस्थान नहीं, मेरा स्वभाव शुद्ध स्वभाव है, गुणस्थान से परे मेरा स्वभाव है, मैं शुद्ध स्वभावी अखंड चैतन्यशाली आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन करें। मेरा सम्यक दर्शन वर्तमान में क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन है, यह भी सादि शांत है, अभी है भविष्य में नहीं रहेगा। यह भी छूटने वाला है, विनाश स्वभावी है क्षायुपशम सम्यक दर्शन, अविनाशी सम्यक दर्शन तो क्षायिक सम्यक दर्शन है, वह मेरा स्वभाव है। क्षायिक सम्यक दर्शन मेरा स्वभाव है, क्षायिक सम्यक ज्ञान मेरा स्वभाव है, क्षायिक सम्यक चारित्र मेरा स्वभाव है, ये तीनों क्षायिक उपाधि वाले गुण सादि अनंत पर्याय वाले हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन सादि अनंत होता है, क्षायिक सम्यक ज्ञान सादि अनंत रूप है, क्षायिक सम्यक चारित्र सादि अनंत रूप है। ऐसा चिंतन करें, मन को सजग रखे, प्रमाद से मुक्त रखे, पूरी तरह से आँखों को बंद न करे, आधी आँखें खुली रहे आधी बंद रहे, नासिका दृष्टि से पूर्ण बंद करेंगे तो यह आध्यात्मिक विषय आत्मा को बड़ा विश्राम देता है और तुरंत अटैक कर देता है अपना नींद। जागृति का नाम ध्यान है, जागृति का नाम सामायिक है। स्वयं में स्वयं को जागृत रखना और अपने ज्ञानोपयोग को चिंतन में लगाना सामायिक है। अपनी आत्मा को आत्मा में जागृत रखें। और ज्ञानोपयोग को सरल, सीधा, निर्विकार, निष्कषाय बना करके जो भी ध्यान में आता है उसको जानें और उसको देखें। जिसको आप देख रहे हैं उससे हर्ष विषाद नहीं करना, राग बुद्धि नहीं करना, द्वेष बुद्धि नहीं करना, केवल वस्तु को जानना है और देखना है। आप क्या देख रहे हैं देखो, देखने के लिए मना नहीं है, राग द्वेष करना मना है। कोई भी वस्तु आ जाए, कुछ भी दिख जाए, चिंता न करे। मन यदि दौड़ रहा हो कहीं बहुत दूर, उसको भी छोड़ दें, दौड़ने दें, जहाँ जाता है वहाँ पर जाने दें। परिग्रह की ओर जा रहा है, घर की ओर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, जाने दें, उसको टेंशन न दें। घर में जाता है, जाने दें। किसी वस्तु को देखता है, देखने दें, ढीला छोड़े मन को, देखो उस वस्तु को, देखना मना नहीं है, परिग्रह को देख सकते हैं, देखो। परंतु क्या नहीं करना है, राग द्वेष नहीं करना है, केवल जानना है और केवल देखना है, मोही नहीं होना है, निर्मोही रहना है। ग्रहण करने के भाव नहीं लाना है, त्याग के भाव रखना है। जो दिख रहा है उस वस्तु को देख करके यह सोचें कि इसका मेरा त्याग है, त्याग है, ऐसा चिंतन करेंगे, राग द्वेष नहीं होगा। त्याग है ऐसा नहीं कहेंगे तो राग द्वेष प्रारंभ होगा। कुछ भी दृष्टि में देखो, उसको देख करके क्या कहो मन में, ये मेरा त्याग है। कब तक? 20 मिनट के लिए। ये वस्तु ही त्याग नहीं, बल्कि यह मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, इसका भी त्याग है 20 मिनट के लिए। मेरे आत्मा के भीतर जो कर्म हैं, वे कर्म भी जड़ हैं, अचेतन हैं, मेरे द्वारा ही बांधे गए हैं, अनादिकाल से हैं ये, इनका आना जाना तो लगा रहता है, ये जड़ परमाणु भी मेरे नहीं हैं। ऐसा चिंतन करें, अपनी आत्मा के भीतर द्रव्य कर्म के पुंज को देखें, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये पुद्गल परमाणु सर्वत्र आत्म प्रदेशों में विद्यमान हैं। उनको अपनी दृष्टि से देखें कि ये कर्म मैंने ही संपादन किया था, मैंने ही ग्रहण किया था, मैंने ही बाहर से लाकर अंदर पटकाया है, आत्मा का घर मलिन हुआ है। इस कचरे को मुझे आज न कल बाहर निकालना है, ऐसा चिंतन करें। कर्म को मुझे आज न कल बाहर निकालना है, कर्मों को देखे आत्मा के प्रदेशों पर। आत्मा शरीर प्रमाण है, आकार की परिकल्पना करें। पद्मासन में शरीर बैठा हुआ है तो आत्मा का आकार भी अमूर्त, वह आकार शरीर प्रमाण विद्यमान है। और उन आत्म प्रदेशों पर कर्म परमाणु घुल गए हैं, मिल गए हैं, आत्म प्रदेशों के साथ ऐसा संबंध इनका अनादिकाल से हुआ है, जैसा दूध के भीतर शक्कर घुल जाता है और अपने अस्तित्व को रखते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। शक्कर के कण अलग हैं और दूध के कण अलग हैं, जैसे ये दोनों कण अलग अलग रहते हैं, वैसे आत्मा अखंड प्रदेशी अलग है, शरीर आकार का है, और उसके भीतर घुल मिले जो पुद्गल परमाणु अत्यंत सूक्ष्म हैं, शक्कर कण के भांति प्रत्येक आत्मा के प्रदेश पर विद्यमान हैं। उनका चिंतन करें, एक मिनट चिंतन करें, प्रमाद न करें, निद्रा को आने न दें, निद्रा को भगाएं। निद्रा डेंजर है, ध्यान करने नहीं देगा, सामायिक करने नहीं देगा। बहुत हल्का होता है ध्यान, बहुत कोमल होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लेकर के जब हम भीतर उतरते हैं तो तुरंत ही अटैक करती है हमें निद्रा, भगा दे उसे। सावधान, निद्रा से सावधान। विषय की ओर ध्यान रखें, चिंतन करते जाएं, पद्मासन में रहने वाला यह शरीर, इसी शरीर के भीतर अमूर्त आत्मा शरीर प्रमाण है। इसके भीतर उसके प्रत्येक प्रदेशों पर ज्ञानावरणादि 8 कर्मों को देखें, हर प्रदेश पर हैं मोहिनी कर्म के कण, प्रत्येक प्रदेश पर हैं। मिथ्या तो प्रकृति के कण प्रत्येक प्रदेश प्रदेश पर हैं, सम्यक मिथ्यात्व के कण प्रत्येक प्रत्येक प्रदेश पर हैं, सम्यक प्रकृति के सम्यक मिथ्यात्व कर्म के परमाणु आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर हैं, उनका अवलोकन करें और विचार करें इन्हीं कर्मों के उदय के कारण मैं अपने सत्य मार्ग को खो बैठता हूँ, असत्य पर मुझे विश्वास हो जाता है और सत्य पर विश्वास उड़ जाता है। यही वो परमाणु हैं जो मेरे लिए सत्य मार्ग से वंचित रखते हैं, जो मिथ्यात्व के कण हैं। इन्हीं कणों को मुझे अलग करना है, निर्जरित करना है, उपशमन करना है, क्षयोपशम अवस्था को प्राप्त होना है और यह अवस्था मुझे प्राप्त हो चुकी है। मैं पंचम गुणस्थान में हूँ, मेरी सत्ता में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व दो प्रकृति हैं और उदय में एक सम्यक प्रकृति है। यह सम्यक प्रकृति मुझे चल परिणाम, मल परिणाम, अगाढ़ परिणाम को उत्पन्न करा देता है। ये दोष रूप परिणाम की उत्पत्ति में यही पुद्गल परमाणु मेरे लिए कारणीभूत हैं। इनका भी मुझे क्षय करना है, पर तब तक मैं क्षय नहीं कर पाऊंगा जब तक कि इन परमाणुओं के उदय में उत्पन्न होने वाले दोष, उत्पन्न होने वाले परिणाम, उत्पन्न होने वाले भावों को मैं अपने पुरुषार्थ पूर्वक नहीं जीतूंगा, तब तक मेरा सम्यक दर्शन भी निर्मल नहीं बनेगा, क्षायिक नहीं बनेगा। उदयागत कर्म ये नहीं कहता तुम हे आत्मा चल परिणाम वाले बन जाओ, पर मैं ही अपने प्रमादवश भूलवश अजागृत अवस्था में मैं चल परिणामों को करता हूँ, मलिन परिणामों को करता हूँ, अगाढ़ परिणामों को करता हूँ और पुनः पुनः कर्म के फल को भोगता हूँ। यदि मैं पुरुषार्थ कर लूँ चल परिणामों को हटाने के लिए, मैं हटा सकता हूँ, तब सम्यक प्रकृति का उदय भी चल परिणाम में निमित्त नहीं बनता, उदय में आकर वैसे ही खिर जाता है। मैं चल दोष करूँगा तो वो फल देगा, मैं चल दोष नहीं करूँगा तो वह फल भी मुझे नहीं देगा। ये सम्यक प्रकृति के परमाणु आत्मा के रग रग में विद्यमान हैं, इन्हीं परमाणुओं की निर्जरा मुझे करना है और सादी अनंत जिसका नाम है क्षायिक सम्यक दर्शन, सादी अनंत पर्याय रूप है, उस पर्याय की प्राप्ति मैं करना चाहता हूँ। इस प्रकार चिंतन करे, मनन करे और ध्यान के लिए विराम दें। थोड़ा सा चिंतन करे, मनन करे कि मैं आत्मा हूँ, मेरे आत्म प्रदेशों पर जो द्रव्य कर्म हैं ये भी मेरे नहीं, शरीर ये भी मेरा नहीं, ये दोनों ही पुद्गल पदार्थ हैं, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। घर मेरा नहीं, परिग्रह मेरा नहीं, वैभव मेरा नहीं, इसको मेरा मेरा कहना मेरी अज्ञानता है। अज्ञान बुद्धि से पर पदार्थ को मैं मेरा कहता हूँ, यह भ्रम है, क्योंकि जो पर है वो मैं कैसा हो सकता हूँ, जो पर है वह मेरा कैसा हो सकता है, जो पर है वो मेरा नहीं और उसमें मैं नहीं, जो मैं हूँ और जो मुझ में है वो अलग है। मुझ में सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन मेरा है, सम्यक ज्ञान मेरा है, सम्यक चारित्र रत्न मेरा है, ऐसा चिंतन करें, सुनते जाएं, उपयोग को लगाएं सुनने में और निद्रा से सावधान रहे। दीर्घ श्वास लें, शरीर आकार से आत्मा को देखें और पुद्गल परमाणुओं को, छाए हुए फैले हुए पुद्गल परमाणुओं को भी देखें और आत्मा को भी देखें और दीर्घ श्वास लें। श्वास लेते समय यह वायु शरीर में प्रवेश कर रहा है ऐसा चिंतन करें, आत्मा को वायु, आत्मा वायु को ग्रहण भी नहीं कर सकता, छोड़ भी नहीं सकता, शरीर के भीतर वायु प्रवेश कर रहा है, आत्मा वायु ग्रहण से परे है, निमित्त मात्र है। अपनी आत्मा ही सिद्ध भगवान के समान पुरुषाकार है, उसको ध्यान में रखते हुए ओंकार ध्वनि को उच्चारण करें। ओ नमः सिद्धेभ्यः, सिद्धाकार को देखते हुए उच्चारण, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्ध भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार करें और सिद्ध भगवान से प्रार्थना करें, हे सिद्ध भगवान, आपकी आत्मा जैसे शरीर रहित, कर्म रहित, अज्ञानता से रहित, कषाय से रहित एवं मिथ्यात्व भावों से रहित है, वैसे ही मेरी आत्मा है, मैंने उसको देख लिया है, पुरुषार्थ पूर्वक मैं प्राप्त करने का प्रयास करूंगा और आपके पास ही आऊंगा, सिद्धालय में आऊंगा। सिद्धालय में आने तक मेरे लिए आत्मबल प्रदान करो, सम्यक ज्ञान प्रदान करो, सम्यक दर्शन प्रदान करो और सम्यक चारित्र को प्रदान करके मेरी आत्मा को मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के योग्य बनाओ भगवन, ऐसा आत्मबल प्रदान करो। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। अनंतानंत सिद्ध भगवंतों को मेरा नमस्कार है। 3.9 करोड़ मुनि महाराजों को मेरा नमस्कार है। मेरा नमस्कार है। मेरा नमस्कार है। नींद आई क्या? ध्यान किया? थोड़ी थोड़ी हम देख रहे थे, कोई कोई का ऐसा ऐसा सिर। आध्यात्मिक ध्यान का प्रैक्टिस करना चाहिए, नींद नहीं आएगी। विशुद्धि बढ़ेगी तो नींद नहीं आती, और विशुद्धि नहीं रहेगी तो रात को अच्छी तरह से सो लेना चाहिए। सामायिक के टाइम में सोना अच्छा नहीं। जब भी आप सामायिक करेंगे प्रमाद रहित होकर के ही करना चाहिए और चिंतनात्मक करना चाहिए। नित्य नया नया चिंतन करते जाना चाहिए और उसमें विशुद्धि बढ़नी चाहिए। तो यह ऐसा सामायिक कर्म निर्जरा के लिए कारण बनता है। प्रवचन इतना ध्यान से सुनते हैं, आध्यात्मिक प्रवचन, लेकिन वही प्रवचन अगर ध्यान में बिठा कर हम सुनाने लग जाए तो नींद क्यों आती समझ में नहीं आता। बहुत आराम मिलता है क्या? जैसे गादी बिछा करके महाराज ने बिठा दिया और सुला दिया, लोरी सुनाने जैसा लगता होगा। टाइम हो गया जिन